अगले दिन प्रातःकाल राजवंश महल में अभिमन्यु नाश्ता कर रहा था कि उसकी माँ डाइनिंग टेबल के पास आईं और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अभिमन्यु। अभिमन्यु ने उनकी आवाज़ सुनते ही खाना खाना रोक दिया और उनकी ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मासा। अभिमन्यु की माँ ने पूछा, अभिमन्यु आज आप बहुत जल्दी उठ गए, ऑफिस में ज्यादा काम है क्या? अभिमन्यु ने टेबल के पास रखे अपने फ़ोन की ओर देखते हुए कहा, माँ आज हमारी 3-4 मीटिंगें हैं और हम एक भी मीटिंग स्थगित नहीं कर सकते, क्या आपको मुझसे कोई काम था? मासा ने जूस का गिलास उठाया और एक घूंट लेते हुए कहा, नहीं हमें कोई काम नहीं था, हम बस ये जानना चाहती थीं कि आपका मुंबई वाला प्रोजेक्ट जिसकी वजह से आपने शादी की तारीख आगे बढ़ाई है वो कैसा चल रहा है और आप मुंबई कब जा रहे हैं, क्योंकि हमने शादी की तारीख केवल 1 महीना आगे बढ़ाई है, उससे ज्यादा समय हम आपको नहीं दे पाएंगी। अभिमन्यु ने माता की बात सुनकर मन ही मन कहा, अरे हाँ हम तो अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में भूल ही गए, मुंबई में ही हमारा प्रोजेक्ट भी है और इप्सिता का कॉलेज भी, अगर हम प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ जाते हैं तो इप्सिता को साथ ले जा सकते हैं, ये विचार पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? अभिमन्यु को इस तरह सोचते देखकर माँ ने पूछा, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप, हम आपसे कुछ पूछ रही हैं। अभिमन्यु अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी मासा ने कहा, क्या बात है अभिमन्यु, क्या सोच रहे हैं आप, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए कब जा रहे हैं आप मुंबई अपने प्रोजेक्ट के लिए? अभिमन्यु ने मासा की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ मासा हमें प्रोजेक्ट के लिए जाना है और हम यहीं से 2-3 दिनों में निकलेंगे, शायद हमें मुंबई में 8 से 10 दिन रहना पड़ेगा। मासा अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी खुश होते हुए बोली, चलो अच्छी बात है, इन 10-15 दिनों में आपका काम निपट जाएगा, फिर हम शादी की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगी, लेकिन हाँ अभिमन्यु हमारी एक बात याद रखिएगा। जैसे ही मासा ने ये बात कही अभिमन्यु उनकी ओर बिल्कुल गंभीर होकर देखने लगा। मासा ने कहा, हमने बहुत मुश्किल से शादी की तारीख आगे बढ़ाई है, अब हम इसके बाद आपका कोई बहाना नहीं सुनने वाली हैं, इसलिए अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट है तो उसे भी इन दिनों में ही खत्म कर लीजिएगा, ठीक है? अभिमन्यु ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, जी मासा हम आपकी बात समझ गए हैं, दरअसल हमें आपसे कुछ और बात भी करनी थी। मासा थोड़ी उलझन में अभिमन्यु की ओर देखने लगी, वो उसके चेहरे के भाव देख रही थी। अभिमन्यु काफी उलझन में लग रहा था, उसके चेहरे से समझ में आ रहा था कि वो किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान है। मासा को जैसे ही ये बात समझ में आई उन्होंने तुरंत पूछा, क्या बात है अभिमन्यु, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या, या कुछ कहना है आप हमें? अभिमन्यु ने कहा, मासा वो इप्सिता को ले जा सकते हैं। अभिमन्यु ने आखिरकार इप्सिता को लेकर जो बात मन में थी वो मासा को कह दी। अभिमन्यु बात करने से थोड़ा असहज हो रहा था, तभी मासा ने कहा, वो आपके साथ इस व्यापारिक यात्रा में जाकर क्या करेंगी, आप वहाँ अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त रहेंगे तो उनके साथ ज्यादा समय भी नहीं बिता पाएंगे, तो फिर उनका वहाँ क्या काम? जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात सुनी उसने मासा की बात खत्म होते ही कहा, वो मासा हम ये कह रहे थे कि इप्सिता की अंतिम परीक्षाएं हैं और उनका कॉलेज हमारी निर्माण स्थल के काफी करीब है, अगर वो हमारे साथ चली जाएगी तो वो आराम से परीक्षा दे देगी, क्योंकि इप्सिता के घर वाले उन्हें परीक्षा देने नहीं जाने दे रहे हैं, वो भी सिर्फ शादी की वजह से, चूंकि उनकी हमसे सगाई हो गई है तो उनकी परीक्षाएं रह जाएंगी, तो क्या हम उन्हें अपने साथ ले चलें? मासा अभिमन्यु की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अगर इप्सिता के माता पिता ही उन्हें परीक्षा देने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हमें नहीं लगता आपको उन्हें अपने साथ ले जाना ठीक रहेगा, उनके माता पिता जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभिमन्यु को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मासा उसे ये बात कहेंगी, वो मासा की ओर बड़ी हैरानी से देखते हुए बोला, मासा अगर उनके माता पिता उन्हें परीक्षा देने नहीं जाने देंगे तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मासा ने अभिमन्यु की बात का बड़ी लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, अब जब वो राजवंशी परिवार की बहू बन रही है तो उन्हें परीक्षा देने की क्या जरूरत, और उनके माता पिता उनकी भलाई के लिए ही सब कर रहे हैं, हमें नहीं लगता आपको इन सारी बातों में दखल देनी चाहिए, इप्सिता के पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनके लिए जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही होगा। अभिमन्यु ने हैरानी से कहा, नहीं मासा ये ठीक नहीं है, हमें उनकी बात समझनी चाहिए, हो सकता है वो हमारी वजह से ही इप्सिता को परीक्षा देने नहीं जाने दे रहे हों, अगर हम या आप में से कोई भी उनके माता पिता से बात कर लेगा तो शायद वे उन्हें परीक्षा देने के लिए भेज दें। मासा ने अभिमन्यु को आंख दिखाते हुए कहा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अभिमन्यु, अभी तो आपकी शादी हुई भी नहीं और आप अपनी होने वाली पत्नी के लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं। मासा मासा के मुँह से ये बात सुनकर चुप हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली, उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं मासा ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस। मासा ने अभिमन्यु को इस तरह बात करते देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, हमने इप्सिता को राजघराने की बहू चुना है और उनके लिए अब सबसे बड़ा कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो खुद को राजघराने की बहू की तरह ढाल लें और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर खुद को राजवंशी राजपरिवार के हिसाब से ढाल लें। हमें नहीं लगता शादी के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई और डिग्रियों की कोई आवश्यकता होगी, इसलिए आप उनके परीक्षा के बारे में भूल जाइए। अभिमन्यु ने जैसे ही मासा के मुंह से ये बात सुनी तो वो थोड़ा नाराज हो गया और उसने उसी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मासा, आप उन्हें अभी से राजघराने की बहू होने की जिम्मेदारियां क्यों देना चाहती हैं? अभी तो उनकी हमसे शादी हुई भी नहीं है। अगर वे अपनी परीक्षा नहीं दे पाएंगी तो उनके मन में हमेशा इस बात को लेकर हम सबके लिए गलतफहमी और थोड़ी खटास रह जाएगी कि शादी हमसे ना हो रही होती तो वे अपनी परीक्षा दे देती, और हम नहीं चाहते कि शादी के बाद उनके मन में इस तरह की कोई बात रह जाए, इसलिए हम उन्हें परीक्षा दिलाना चाहते हैं। मासा अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी सख्ती से बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप अभिमन्यु? उनके मन में हम लोगों को लेकर भला कोई गलतफहमी क्यों होगी? और वैसे भी हमने उनके माता पिता को नहीं मना किया कि वे उन्हें परीक्षा देने जाने के लिए मना करें। ये फैसला उनके माता पिता का है। आप कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इन सारी चीजों के बारे में ना सोचें और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर बोला, आपने उनके पिता को मना नहीं किया लेकिन आप उनके परीक्षा के लिए उनकी तरफ से भी नहीं बोल रही हैं। मासा, अगर आप बोल देंगी तो उनके माता पिता उन्हें जरूर भेज देंगे, इसलिए एक बार अगर आप उनसे बात कर लें तो। इतना बोलते बोलते अभिमन्यु एकदम चुप हो गया, लेकिन वहां पर बगल में खड़ी उसकी माँ उसका मुंह देख रही थी। क्रमशः